Şey. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما سورة النور کی آیت نمبر 34 سے 40 تک کی ہی تفسیر ابھی چل رہی تھی کل اس کے اندر ہم نے پیج نمبر 428 تک تقریباً پڑھ لیا تھا 427 پہ ایک دو باتیں دیکھنی تھیں 427 427 پیج نمبر اس میں رفع مسجد کا مفہوم کل ڈسکس کر لیا تھا ہم نے مسجد بنانے کی فضیلت ہے اس کے تزئین و آرائش کی بھی یعنی ایک اہمیت ہے ہماری دین کے اندر اور بعض فضائل مسجد پھر اس کے بعد اگلا ٹاپک تھا تو اس کے اندر حضرت نے مسجد کے فضائل لکھے ہیں کہ جو شخص یعنی پہلی حدیث یہ لکھی کہ ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرے کرنے والے جیسا ہے حالانکہ نماز اشراق جو ہے یہ فرض نماز نہیں ہے پانچ نمازوں میں سے نہیں ہے یہ فجر کے بعد جب اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس وقت اگر کوئی نفل پڑھی جاتی ہے تو وہ اشراق کی نفل کہلاتی ہے لیکن اگر نفل کی نماز بھی مسجد میں جا کر کے پڑھے گا تو مسجد کی اپنی فضیلت الگ ہے گھر کے اندر پڑھنے کے ثواب اپنی جگہ پر ہے اور مسجد میں پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے تو مسجد کی حیثیت جو ہے وہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ایک سینٹرل پوائنٹ کی حیثیت ہوتی ہے تو سینٹرل لوکیشن سینٹرل پوائنٹ کے مرکز یعنی مرکز کی حیثیت ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس مسجد کی بڑی اہمیت ہے کہ مسجد کے اندر مسلمان مردوں کا آنا جانا کثرت کے ساتھ رہنا چاہیے اور یہ ایک سوشل یعنی جو نظام ہے مسلمان معاشرے کا تو یہ سوشل نظام بھی جو ہے وہ مسجد سے ہی آپریٹ ہونا چاہیے یہی سب سے آئیڈیل طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی یہی یعنی مسجد بھی تھی یعنی سجدے کی جگہ یہی علم حاصل کرنے کی بھی جگہ تھی یعنی مدرسہ رائٹ اصحاب صفہ کا جو مدرسہ تھا دین اسلام کا پہلا مدرسہ وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ملحق تھا رائٹ اس وقت مسجد اتنی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی کہ اصحاب صفہ کا علاقہ اس کے اندر شامل تھا لیکن مسجد کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایڈجسٹنٹ تو تھا نا اور اسی طریقے سے یہی مسجد جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے واعظ و نصیحت کا بھی مقام ہوتی تھی ان کے تزکیے کا بھی مقام ہوتی تھی یہیں پر یعنی اسی مسجد کے ہی برابر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک تھا اور حجرہ مبارک کے دروازے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے کچھ مقامات فکس کیے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی چارپائی ڈال کر کے آرام فرمایا کرتے تھے تو وہ باقاعدہ استوانۂ سریر کے نام سے وہ پلر آج بھی موجود ہے نبی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب جو ریاض الجنہ کا علاقہ ہے تو ریاض الجنہ اور روضہ رسول کے درمیان یہ تین استوانے ہیں ان میں سے ایک استوانہ سریر ہے یعنی وہ جگہ جہاں چارپائی ڈال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے باہر نکل کر کے اپنے گھر سے ٹھیک ہے یعنی گھر کے اندر آرام کرنا جو ہے وہ ایک الگ تھا اور گھر کے باہر لوگوں کے ساتھ کے سامنے آرام کرنا یا چارپائی پہ بیٹھنا اور لوگوں سے گفتگو شکنی کرنا تو یہ بھی مسجد اور روزے کے درمیان ہی والا معاملہ تھا پھر مسجد اور روزے کے درمیان ہی جو ہے وہ استوانہ وفود بھی ہے کہ یعنی وہ پلر کہ جہاں پر کہ باہر سے آنے والے وفود وفد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے دوسرے شہروں سے دوسرے گاؤں سے دوسرے دیہاتوں سے دوسرے سلطنتوں سے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس استوانہ وفود کے اوپر یعنی ویلکم کیا کرتے تھے تو یہ بھی جو ہے وہ مسجد اور روزے کے درمیان ہی کا علاقہ تھا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ بالکل مرکزی مقام رکھتی ہے اور انسان کا گھر جو ہے جو کہ خصوصاً جو اس علاقے के अमीर हैं, इंचार्ज हैं, तो उनका घर भी जो है वो मस्जिद के बराबर में ही हो, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला जो है वो मस्जिद के अंदर आकर के तय करें और फिर अपने घर की तरफ चले जाएं। तो इस तरह से मस्जिद जो है वो बहुत ही कलीदी हैसियत रखती है। लेकिन आज के दौर के अंदर अक्सर मुकामात पे जहां पर के यानी ऐसा एक सोशल सिस्टम नहीं है या खत्म हो चुका है, तो वहां पर मस्जिद जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इबादत की जगह रह गई है। लेकिन इबादत की जगह रह जाने से इसकी अहमियत कोई ज्यादा कम नहीं हुई है, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अहमियत तो उसकी कम हो गई है, राइट, लेकिन इबादत के मुकाम के हिसाब से उसकी अहमियत अभी भी उतनी ही है, ठीक है। तो अगरचे के वहां पर कोई मिलने जुलने वाला मामला ना हो और मआशरती मसले डिस्कस करने का सिलसिला अब मस्जिदों में ना रहा हो, फिर भी जो है वो मस्जिदें एक अहम मुकाम रखती हैं इबादत की नीयत से, ठीक है। पाकिस्तान के माशरे के अंदर या इंडिया के माशरे के अंदर तो यानी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अभी भी मस्जिद का एक एक अहम मुकाम है। लेकिन जैसे आप सऊदी अरब चले जाते हैं, आप अमेरिका चले जाते, अमेरिका में भी चले जहां पर उन्होंने यानी सेंटर्स बनाए हुए हैं मस्जिदों के अंदर या मस्जिदों के इर्द गिर्द, तो वहां पर भी एक सोशल अहमियत है मस्जिदों की यानी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर। लेकिन गल्फ कंट्रीज के अंदर आप देखते हैं कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है मस्जिदों का, अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली फॉर एक्सपैट्स, जो बाहर के लोगों के बाहर के मुल्कों के लोग आए हुए होते हैं रहने के लिए, उनके लिए तो कोई नहीं है इसका मुकाम, ठीक है। लेकिन बहरहाल मस्जिद का अदब अपनी जगह पर अभी भी है, क्योंकि मस्जिद तो वो है ना, ठीक है, चाहे कुछ और चीज ना भी हो फिर भी मस्जिद तो है, और काबतुल्ला की बेटियों में तो अभी भी उसका शुमार होता है। और काबतुल्ला से जो जो अनवारात और तजलियात डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिदों में, तो वो इस मस्जिद में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। वो आपके घर में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने शुरू हो गए ना, ये मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू कम हो गई है, तो अब जो है वो अनवारात और तजलियात आपके घर में पहुंचने शुरू हो गए, राइट, नहीं, इबादत की जगह तो वो है ना अभी भी, चाहे कहीं भी हो, तो इस वजह से वो स्पेशल मुकाम तो अभी भी मस्जिद का ही है। इस वजह से मस्जिद के फिर उन्होंने 15 आदाब भी पेज नंबर 428 के ऊपर लिखे हैं। तो उनमें से पहला अदब कि मस्जिद में पहुंचने पर अगर लोगों को बैठा देखे और वो लोग तिलावत कुरान और नमाज वगैरह में मसरूफ ना हो, यानी एक हल्का बना करके बैठे हों, चाहे वो इल्म का हल्का हो चाहे जिक्र का हल्का हो, यानी बस बैठे हुए हों, होता ना आपस में गुफ्तगू शुनीद करने के लिए, जिक्र का हल्का तो नहीं करना चाहिए क्योंकि जिक्र में तो वो मसरूफ है, फिर तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो ऐसे बैठे हुए हैं बातचीत के लिए, तो यानी जाहिर है यानी ऐसी बातचीत जो कि दीनी फायदे की बातचीत हो, तो वहां पर जाकर के उनको सलाम करना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला अदब है सलाम करना। दूसरा ये कि मस्जिद में दाखिल होकर बैठने से पहले तहियतुल मस्जिद की दो रकत पढ़ लें। लेकिन तहियतुल मस्जिद के लिए भी लिखा है कि जिस वक्त मकरूह वक्त हो, जो मकरूह वक्त हो पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, तो उस वक्त तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि ऐसे ही जाके बैठ जाना चाहिए। तीसरा ये कि मस्जिद में खरीद व फरोख्त यानी ये चीजें बिल्कुल भी ना करें, ब्याह और शराब वगैरह। चौथे कि वहां पर तीर तलवार ना निकाले, क्योंकि वो इबादत की जगह है, तीर तलवार या असलहा निकालने से लोगों के दिल के ऊपर एक खौफ तारी होता है, तो ये भी अदब के खिलाफ है। पांचवी ये कि मस्जिद में अगर कोई गुमशुदा चीज हो तो उसके ऐलान ना करे, यानी इस किस्म की बातों के ऐलान, खुसूसन जो आजकल जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं तो मस्जिदों के अंदर तो खड़े होकर के खास तौर पर ऐलान करते हैं, तो ऐसे ऐलान जो है मस्जिद के अंदर ना करे। छठा ये कि मस्जिद में आवाज बुलंद ना करे। सातवां ये कि वहां दुनिया की बातें ना करें, ठीक है, यानी एक तो खरीदो फरोख्त एक दुनिया की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया की बातें हो सकती हैं, मिसाल मिसाल के तौर पर अपने रिश्तेदारों की खैर खैरियत और वो क्या कर रहा है और सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है और तुम्हारा काम काज कैसा चल रहा है वगैरह, ये सारी चीजें जो है वो मस्जिद के अंदर डिस्कस ना करें। आठवीं ये कि मस्जिद में बैठने की जगह में किसी से झगड़ा ना करे कि भाई मैं इधर बैठूंगा तुम क्यों आकर के बैठ गए मेरी जगह के ऊपर, या मैं चाहता था यहाँ पर बैठना तो तुम हटो यहाँ से, ये हरकत बिल्कुल भी ना करे। नवी ये कि जहां सफ में पूरी जगह ना हो वहां घुसकर लोगों पर तंगी पैदा ना करे। बैठे हुए हैं लोग अपने सफ के अंदर और आप जो है वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, फलानने की कोशिश कर रहे हैं। दसवीं ये कि किसी नमाज पढ़ने वाले के आगे से ना गुजरे। नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरने का मसला ये है कि अगर कोई इनफरादी नमाज पढ़ रहा है तो उसके आगे से गुजरना मना है, ठीक है। हदीस पाक में आपने यकीन सुना होगा, पढ़ा होगा कि बेहतर है कि 40 साल खड़ा रहना पसंद कर ले अगर उस शख्स को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने का कितना गुनाह मिलता है, ठीक है। तो इस आगे से गुजरने के ऊपर फिर उलमा ने लिमिट लगाई है कि कितना आगे से गुजरना जायज है। तो कुछ उलमा ने 2 सफ का फरमाया कि 2 सफ के मिकदार जो है ना, अगर डिस्टेंस हो जाए तो उसके आगे से फिर गुजरा जा सकता है, ठीक ठीक है, यानी उसके अपने सजदे की जगह जो होती है वो एक सफ के मकदार जगह होती है, फिर उसके आगे एक और सफ को छोड़ दें, ठीक है। तो अब उसके आगे से अगर गुजरने की जरूरत पड़ रही है तो गुजर सकते हैं, इतना नहीं है कि जी कोई मस्जिद के आखिरी कोने पर नमाज पढ़ रहा है तो अब उसके आगे जितना बड़ा इलाका है कोई भी उसके आगे से नहीं गुजर सकता, ऐसा मामला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि और एक्चुअली कुछ उलमा ने एक सफ के भी मकदार कहा है कि एक सफ का मकदार छोड़ करके फिर उसके बाद आप गुजर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर सुतरा रख दिया जाए, सुतरा जो होता है वो एक हाथ के बराबर कोई भी चीज, कोई बैग रख दिया जाए फॉर एग्जाम्पल, कोई छड़ी जो है वो जो कि इतनी मोटी हो, एक हाथ के बराबर मोटी हो और इतनी इतनी थोड़ी सी लंबी हो, ठीक है, हाथ के बराबर लंबी हो, तो उस चीज को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो सुतरा बन जाता है, अब उसके आगे से गुजरा जा सकता है। ये शरीयत की का हुक्म है, और इसके अंदर क्या क्या हिकमत है, क्या क्या यानी क्या इसकी लॉजिक है, ये हमें समझ में आए या ना आए इसके से फर्क नहीं पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सुतरा रख दिया जाए तो उसके आगे से गुजरने की इजाजत है। अलबत्ता एक और अहम पॉइंट ये है, खवातीन के ऊपर इतना अप्लाई नहीं होता लेकिन मर्दों के लिए, कि अगर मस्जिद के अंदर जमात हो रही हो तो जमात का जो इमाम होता है उसके आगे से गुजरना मना होता है, ठीक है। किसी मुक्तदी के आगे से गुजरने की जरूरत पड़ जाए तो उसमें कोई मुजायता नहीं है, ठीक है। जमात के अंदर पीछे जो लोग खड़े हुए हैं तो उनके आगे से गुजरा जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। इमाम के आगे से गुजरना मना है, गोया के उस वक्त इमाम जो है ना वो इनफरादी नमाज पढ़ने वाले के कायम मुकाम हो जाता है, और बाकी जो पीछे पढ़ने वाले हैं वो उनके आगे से गुजरने की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आपका वजू टूटे, आप जमात में खड़े हुए, आपका वजू टूट गया, अब आप नमाज कंटिन्यू नहीं कर सकते, अब आप वहां से निकले कैसे जाके वजू बनाने के लिए, तो आप बिला झिझक अपने बराबर में जितने भी लोग खड़े हुए थे ना सफ, चाहे कितनी लंबी सफ क्यों ना हो, आप उन लोगों के सामने से आराम से गुजर करके बाहर चले जाएं, जाकर के वुजू बनाएं, अगर वापस आने तक जमात अभी तक जारी है तो उस जमात के अंदर शामिल हो जाएं। उसके फिकह तरीके हैं कि कैसे जो है वो जमात के अंदर दाखिल हुआ जाता है जबकि आपका बीच में वुजू टूट गया हो, ठीक है। तो ये इन्होंने अच्छा 12वीं ये भी लिखी हुई है, 11वीं के मस्जिद में थूकने नाक साफ करने से परहेज करें, 12वीं के अपनी उंगलियां ना चटकाए, 13वीं के अपने बदन के किसी हिस्से से ना खेले, 14वीं नजासात से पाक साफ रहे और किसी छोटे बच्चे या मजनून को साथ लेकर के ना जाए। छोटे बच्चे को साथ ले जाने का मसला यह है कि अगर किसी मजबूरी के तहत रास्ते में नमाज का वक्त हो गया, घर नहीं पहुंच सकते हैं और छोटा बच्चा साथ है तो छोटे बच्चों को साथ ले जा सकते हैं। छोटे बच्चे से मुराद क्या होती है कि ऐसा बच्चा जो कि लोगों की नमाज को डिस्टर्ब करेगा, शोर मचाएगा, ठीक है, या ये कि लोगों के आगे से गुजरेगा और खेल कूद में मसरूफ हो जाएगा जिससे कि मस्जिद का जो वकार होता है वो मजरूह होगा। लेकिन अगर ऐसा बच्चा है कि उसको आपने समझा दिया है, वो बात मान करके सुकून से बैठ जाता है और किसी की नमाज को तंग खराब नहीं करता, तो फिर उसकी गुंजाइश उलमा ने निकाली है। तो ऐसे छोटा बच्चा जो कि यानी ऐसा यानी नहीं कंट्रोल में हो बिल्कुल भी, तो उसको फिर मस्जिद से दूर ही रखना चाहिए अनलेस के कोई मजबूरी हो जाए। दूसरी बात यह है कि खवातीन के साथ, जब खवातीन को कभी मस्जिद में नमाज पढ़नी पड़ जाती है तो खवातीन के साथ तो बच्चे होते ही हैं और उनके लिए फिर यानी ये मामला करना कि बच्चों को कंट्रोल में रखें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो खवातीन का मामला ये होता है कि खवातीन की जो पढ़ने की जगह होती है ना मस्जिदों के अंदर, ठीक है, उमूमी तौर पर वो मस्जिद में दाखिल ही नहीं होती है, ठीक है, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है, यानी जो शरई मस्जिद होती है, ठीक है, मस्जिद की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, शरी मस्जिद का जो हिस्सा होता है ना ये वो हिस्सा होता है कि जिसके अंदर रमजानुल मुबारक में सुन्नत एतिकाफ किया जाता है, ठीक है, और जिस हिस्से से अगर आप बाहर निकल जाएं बगैर किसी शरी वजह के तो आपका एतिकाफ टूट जाता है, ठीक है। तो ये जगह जो है ना ये शरी मस्जिद कहलाती है। इस मस्जिद के अंदर हाइजा का आना भी मना है, इस मस्जिद के अंदर जुम्बी का भी जो है वो आना मना है, और इस मस्जिद ही की सारी बात हो रही है। तो बिल्डिंग के अंदर जो दूसरे नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है ना वो शरी मस्जिद में दाखिल नहीं होती है। तो औरतों की जो नमाज पढ़ने की जगह होती है वो उमूमन शरी मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं होती है। तो इवन अगर औरतों को बच्चों को ले जाना भी पड़े ना तो वो फिर मस्जिद के हिस्से में तो वो वैसे ही शामिल नहीं होता है, ठीक है। तो और वैसे भी मजबूरी के अंदर जो है वो ना ले जाना पड़ता है। तो औरतों के लिए भी काफी यानी रिलैक्सेशन है इस मामले में कि यानी वो फिर बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि उनके बच्चे जो है लोगों को तंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो है वो औरतें ही होती हैं, दूसरी औरतें, वो दूसरी औरतों के भी बच्चे होते हैं, राइट। और दूसरा ये कि मतलब अल्लाह ताला ने औरतों की जिम्मेदारी लगाई है खास तौर पे बच्चों के मामले में, तो इस वजह से तो उनके लिए रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन है। अलबत्ता अगर मस्जिद का कोई हिस्सा है जिसके अंदर औरतें नमाज पढ़ रही हैं, तो वहां पर बस कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा मामला ना हो कि बच्चे जो है वो दूसरों को तंग करें, तो जितना कर सकते हैं उतना तो करें ना। फिर उसके बाद फरमाया एक हेडिंग के तहत ही कि जो मकानात जिक्रुल्लाह, तालीम कुरान, तालीम दीन के लिए मखसूस हों, वो भी मसाजिद के हुक्म में ही हैं, जैसे मदारिस और खानकाहें, ये भी जो है वो दीन की तालीम के लिए और दीन के और अल्लाह के जिक्र के लिए मखसूस कर दी जाती हैं, तो इनके साथ भी वैसे ही अदब का मामला करना चाहिए जैसे कि यानी मखसूस मस्जिद के साथ मामला करना चाहिए। अज़न अल्लाहु अन तरफ़ा में लफ्ज़ इज़्ज़न की खास अहमियत पर बयान फरमाई थी कि जी लफ्ज़ इज़्ज़न क्यों इस्तेमाल किया, हालांकि इज़्ज़न का तो तर्जुमा होता है इजाजत, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लफ्ज़ इज़्ज़न का मतलब ज्यादा समझ में नहीं आता, असल में तो ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है, ठीक है, तो हुक्म के लिए तो इज़्ज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, हुक्म के लिए तो अमर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है, या अमर का सीगा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इज़्ज़न का लफ्ज़ क्यों लेकर के आए, तो उसकी एक तशरीह बयान फरमाई कि यानी इज़्ज़न के लाने में क्या मसलहत है, तो रूहुल मानी में एक लतीफ़ मसलहत उसकी ये बयान की है कि इसमें मोमिनीन सालिहीन को इस अदब की तालीम व तरगीब देना है कि वो अल्लाह ताला की मर्जी हासिल करने के हर काम के लिए ऐसे मुस्तैद और तैयार होने चाहिए कि हुक्म की उनको जरूरत ही ना पड़े, बल्कि वो इसके मुंतजर हों कि कब हमें इस काम की इजाजत मिले तो हम ये सआदत हासिल करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से इज़्ज़न का लफ्ज इस्तेमाल किया, यहाँ पे अमर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया कि भाई हुक्म की इजाजत मिल जाए और मैं निकी का काम करूं। औरतों की मसाजिद के बारे में पेज नंबर 429 के आखिरी पैराग्राफ में यह हदीस नकल करी है कि मुस्नद अहमद और बैहती में है, में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरु मसाजिद निसाई क़अरु बुयूतिहिन्ना, के क़अरु बुयूतिहिन्ना यानी औरतों की बेहतरीन मसाजिद उनके घरों के तंगो तारीख गोशे हैं, यानी घरों के सहन नहीं, सहन तो ओपन होते हैं, राइट, के घर के अंदर गार्डन है फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में सहन गार्डन की शक्ल में होता है, बगीचे की शक्ल में, तो वो भी नहीं, बल्कि अंदर कोई कमरा हो जो कि घर के जितना अंदर मौजूद हो उतना ज्यादा बेहतर है। तो इसकी हिकमत साफ नजर आती है कि चूंकि अल्लाह ताला ने औरतों के लिए पर्दे को ज्यादा पसंद फरमाया है और घरों को जो है वो औरतों के लिए ज्यादा पसंद फरमाया है कि घरों को ही उनके रहने की जगह और उनकी इज्जत की हिफाजत की जगह, और अल्लाह ताला ने मर्दों को जिम्मेदार बनाया है कि उनकी जरूरियात की चीजें जो है वो बाहर से उनको मुयस्सर करो। तो जब अल्लाह ताला ने इतने सारे इंतजाम फरमाए हैं तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनका फायदा उठाए औरत और घर के अंदर ही ज्यादा रहे, यानी अनलेस के कोई मजबूरी आ जाए कि उसको निकलना पड़े। तो ये बात हमने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस करी थी कि बगैर मजबूरी के घर से निकल करके मस्जिद में जाना और उसको ज्यादा सवाब की का बायस समझना अपने लिए कि जी मैं मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगी तो मुझे भी 22 गुना सवाब मिलेगा, 27 गुना सवाब मिलेगा, तो ये औरतों के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए है। मर्दों के लिए ज्यादा सवाब जो है वो उनके घर के अंदर जो ज्यादा से ज्यादा अंदर वाली जगह मौजूद होकर के ना वही वो ज्यादा अल्लाह ताला को पसंदीदा है, और बाकी है कि ये हमारा दीन जो है वो अल्लाह की पसंद का ख्याल करने वाला दीन है, हमारी की पसंद का ख्याल करने वाला दीन नहीं है कि हम चाहते हैं कि जी ज्यादा सवाब हासिल करें तो अब हम जो है अपने हिसाब से मस्जिद में जाया करेंगे और वहां पे नमाज पढ़ेंगे और हमें ताकि ज्यादा सवाब मिल जाए। तो ये तो अल्लाह ताला ने सिस्टम ही ऐसा नहीं बनाया है, अल्लाह ताला ने तो सिस्टम ये बनाया है कि इस दुनिया में तुम मेरी पसंद की हिफाजत करो, मेरी पसंद का ख्याल करो, मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पसंद का ख्याल करूंगा, ये है डील, ठीक है, दिस इज अ डील बंदे और परवरदिगार के दरमियान, और ये बंदों के अंदर औरतें भी शामिल है, ठीक है, सिर्फ मर्द तो शामिल नहीं है ना, कि मर्दों ने इस डील के ऊपर अमल करना है अल्लाह ताला के साथ, ठीक है, मर्दों ने अमल करना है, मर्दों को अगले जहान के अंदर अल्लाह ताला उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे, ठीक है, और अगर औरतें इस डील का ख्याल रखेंगी तो औरतों का अल्लाह ताला फिर अगले जहान के अंदर उनकी पसंद का ख्याल रखेंगे, और जो भी ख्याल नहीं रखेगा तो उसको फिर अपनी पसंद जो है वो यानी अगले जहान के अंदर भी कुर्बान करनी पड़ेगी। इस जहान के अंदर तो मामला है ये कि जी हम अपने एक आध पसंद जो है वो जिद करके जो है वो हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन बाकी 99% पसंद तो हमारी वैसे ही पूरी नहीं होती। होती है उस दुनिया के अंदर। इसलिए इस दुनिया की तो नेचर ही अल्लाह ने ऐसी नहीं बनाई कि हमारी पसंदें पूरी हो सके। तो जिद करके और यानी लड़ झगड़ करके हम ज्यादा से ज्यादा अपनी एक डेढ़ पसंद पूरी करवा लेते हैं, लेकिन उस जिद और लड़ाई झगड़े की वजह से हमें नुकसान क्या होता है कि अगले जहान की जो पसंद होती है वो फिर हमारी वो भी चली जाती है। ठीक है, तो अकलमंदी तो इसमें यही है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ अल्लाह की पसंद ही को ही प्रेफर किया जाए और अपनी पसंद को अनप्रेफर किया जाए, ताकि हम अगले जहान के फायदे को, जो कि असल फायदा है, उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर जाए। तो इस वजह से हमने बात करी थी कि इवन मक्का मुकर्रमा के अंदर जब जाएं तो हरम के अंदर नमाज पढ़ने का मामला औरतों के साथ ऐसा है कि जब उनको तवाफ करने के लिए या उमरा करने के लिए जाना है तो फिर मस्जिद जाएं, और अगर तवाफ और उमरा करने का इरादा नहीं है तो सिर्फ ये नहीं कि भाग भाग करके औरतें पहुंची जा रही हैं कि जी हमें भी जो है वो 1 लाख नमाज का सवाब मिल जाएगा, तो जी हम भी जोहर भी पढ़ेंगे यानी मस्जिद हराम में जाकर के, और हम मगरिब भी पढ़ेंगे और हम असर भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें जी 1 लाख यानी नमाज का सवाब चाहिए। नहीं, दिस इज नॉट व्हाट दीन इज, ये दीन नहीं है हमारा। ठीक है, दीन वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, और वो 1 लाख नमाजों का सवाब जो है वो कंडीशनल है। ठीक है, औरतों के लिए कंडीशनल है, अगर वो उस कंडीशन में जाकर के नमाज पढ़ लेंगी अल्लाह ताला उनको 1 लाख सवाब का नमाजों का सवाब भी दे देंगे, लेकिन अगर अपनी यानी जिद की वजह से जाकर के पढ़ेंगी फिर 1 लाख नमाज का सवाब नहीं मिलता। फिर जो है वो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात को जो है वो एक को तो ले लिया और दूसरे को ना लिया। ठीक है, तो ये सेलेक्टिव दीन जो है ये नहीं चलता। उसी तरह से मस्जिद नबी के अंदर भी अगर सलाम करने के लिए जा रही है तो फिर वहां पर जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो वहां नमाज पढ़ेंगी, और जब नहीं ऐसा कोई मामला तो फिर ये सवाब के चक्कर में, ठीक है, ये कि जी हमें तो यानी ये स्कोर कार्ड नहीं है हमारा दीन, ठीक है, कि सवाब जो है वो स्कोर करते, जिस तरह बैट्समैन होता है ना क्रिकेट के अंदर रन स्कोर करने होता है उसने, ठीक है, अब उसने कभी राइट पे मारना होता है, कभी लेफ्ट पे मारना होता है, कभी उसने जो है वो छक्का लगाना होता है, कभी चौका लगाना होता है, ठीक है, उसका काम है रन स्कोर करना। ठीक है, एक मोमिन जो है ना वो बैट्समैन नहीं होता। ठीक है, मोमिन जो होता है, मोमिन और बैट्समैन के दरमियान फर्क होता है। ठीक है, मोमिन को जो है वो बहुत सारे उसूलों का ख्याल रखना पड़ता है, नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए यानी कवानीन का भी ख्याल रखना पड़ता है और प्रेफरेंसेस का भी ख्याल रखना पड़ता है, मुस्तहबात का भी ख्याल रखना पड़ता है, मकरूहात का भी ख्याल रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उसके सवाब स्कोर होते हैं। ऐसे ही स्कोर नहीं हो जाते आओ देखा ना ताओ नेकी करना जिसको कहते हैं, जैसे कि माशाल्लाह हजरत अस्वद तक पहुंचने के लिए इधर इसको कोनी मारी, इधर उसको ठुड्डा मारा, इधर उसको लात मारी, इधर उसको जो है धक्का दिया, और जी मेहनत इसके कपड़े जो है वो मैं फाड़ दूं, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे तो हजरे अस्वद पे पहुंचना है। ठीक है ना, तो ये नेकी का काम तो हदीस से ही साबित है ना, हजरे अस्वद पे पहुंच करके उसको बेसबूसा देना, लेकिन उसके करने के अंदर जो आपने हरकतें करी हैं, ठीक है, तो ये हमारा दीन वाली नेकी नहीं है, ये हमारे नफ्स वाली, इसी को नफ्स परस्ती कहते हैं। ठीक है, इसको अल्लाह का दीन नहीं कहते, इसको नफ्स का दीन कहते हैं, और नफ्स का दीन जो है इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कि कल हमने पढ़ी थी कि काफिर जब वहां पे पहुंचेगा तो बड़े अपने तौर पे तो बड़ी नेकियां करके आया होगा और कयामत का कायल भी होगा कि ये कयामत में पहुंचूंगा और मुझे नेकियों का सारा सवाब मिलेगा, लेकिन उस दिन उसके लिए मायूसी होगी। ठीक है, उसको पता लगेगा कि ये नेकियां तो काबिल कबूल ही नहीं थी। उसी तरीके से हमारी ये नेकियां जिसकी वजह से हम दूसरों को अजियत पहुंचाते हैं, जिन नेकियों को करने के चक्कर में मकाम इब्राहिम के ऊपर 2 रकत की नियत बांध लेते हैं, ठीक है कि जी वहां पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मकाम इब्राहिम पर 2 रकत नमाज पढ़ो, अब जो तवाफ करने वाले हैं वो हमारी वजह से जो है वो तवाफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो पुलिस वाले हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, उनके लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी हमने कि जी ये खातून आई है, उन्होंने जो है वो 2 रकत की नियत बांध ली है। ठीक है, अब सारी यानी कितने लोग जो है वो हमारी वजह से तंग हो रहे हैं, लोगों के जो तवाफ करने वाले होते हैं वो जब आपको देखते हैं वहां पर तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये तो हम जानते हैं ना कि जब हमें कोई हम दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है, हम यानी तवाफ करने वालों में जब हम शामिल होते हैं ना तो फिर हमारे सामने अगर कोई इस तरीके से आकर के 2 रकत की नियत बांधता है तो फिर हमारे दिल में उसके खिलाफ क्या जज्बात होते हैं, जो कि तवाफ के वक्त तो नहीं होने चाहिए ना मुसलमान के दिल में, लेकिन जब कोई इतनी ऐसी हरकत करता है आकर के तो फिर दिल पे काबू बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तवाफ लोगों का खराब हो जाता है, इस वजह से मकरू कम अज कम हो जाता है ना। किसकी वजह से हुआ, इस औरत की वजह से हुआ या इस मर्द की वजह से हुआ जो कि मकाम इब्राहिम के सवाब को स्कोर करना चाहती है, मकाम इब्राहिम पर 2 रकत पढ़ने के सवाब को स्कोर करना चाहते हैं हजरत साहब। ठीक है, तो ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है, ये दीन नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस वजह से जरा सा अकल को इस्तेमाल करना होता है और बड़ों की बात को मानना होता है कि जी بہتر وہی ہو دین ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور یعنی دین کے مزاج کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. تو جب یہ باتیں اگر ہمارے سمجھ میں آ گئیں تو حرم کے اندر بھاگ بھاگ کر کے جو نمازیں پڑھنے والا دستور عورتوں نے بنایا ہوا ہے تو اس سے اجتناب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرنا پڑے گا انلیس کے کوئی اور ریزن ہو کہ جی آپ ہوٹل میں رہ ہی نہیں سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو مردوں کے ساتھ جو ہے وہ جانا ضروری ہے تو پھر آپ کے لیے ایکسیپشن ہے. پھر ماشاءاللہ آپ کے لیے یعنی نماز کے مقامات بنائے ہوئے ہیں، وہاں پر جگہیں بنائی ہوئی ہیں ڈیزگنیٹڈ ایریاز کہ جہاں پر کہ عورتیں جا کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، تو عورتوں کی مساجد کے بارے میں بات ہو گئی. پھر اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر صحابہ کرام اکثر تجارت پیش آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گئے کہ یعنی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام زیادہ تر تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ تھے، یعنی کوئی چیز مینوفیکچر کرتے تھے. ٹھیک ہے، جیسے تلواریں مینوفیکچر کر رہے ہیں یا اور اس قسم کی چیزیں مینوفیکچر کر رہے ہیں پھر اس کو بیچ رہے ہیں، تو یہ سارے کام جو ہیں بازاروں میں ہوتے ہیں. کیونکہ تجارت و بیع کا معنی ازیاد خدا نہ ہونا انہی لوگوں کا وصف ہو سکتا ہے کہ جن کا مشغلہ تجارت و بیع کا ہو، ورنہ یہ کہنا فضول ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تجارت و بیع کا جو ذکر کیا تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو مخاطب ہیں، جو آڈینس ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ زیادہ تر تجارت و بیع والے لوگ تھے، تو جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کری، ورنہ تو پھر یہ ایک ارریلیونٹ سی بات لگتی، ایک فضول سی بات لگتی. تو تجارت وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے فرمایا، بلکہ شاید حدیث مبارکہ مجھے اگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا، حضرت سے ایک دفعہ سنا تھا کہ تجارت کے اندر 9 حصے رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت میں 9 حصے رزق رکھا ہے اور 1 حصہ رزق یعنی صرف 1/10 رزق جو ہے وہ امپلائمنٹ میں رکھا ہے، نوکری پیشہ کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تجارت کے اندر رزق زیادہ ہوتا ہے. جہاں رزق زیادہ ہوتا ہے نا، تو رزق زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رزق زیادہ ہوتا ہے، RISK. ٹھیک ہے، کیونکہ تجارت کے اندر آپ نے بہت بڑا جو ہے وہ ایک رسک اٹھایا ہوتا ہے کہ جی کسی مال کو آپ خرید کر کے لائے ہوتے ہیں اور جب وہ مال بکے گا تب آپ کو پروفٹ ہوگا، اور اگر وہ مال نہ بکا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے رسک لیا نا. ہو سکتا ہے کہ جی اس مال کی لوگوں کے درمیان طلب ختم ہو جائے، جب تک آپ مال مارکیٹ سے اٹھا کر کے لائے اپنی دکان میں رکھا اس وقت تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈیمانڈ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی کمپیٹیٹر جو ہے وہ اس کا مال مارکیٹ میں آ جائے جو لوگوں کو زیادہ پسند آ جائے، اب آپ کے مال کو وہ نہیں خرید رہے، تو کتنا بڑا آپ رسک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جہاں پر رسک زیادہ ہوتا ہے نا وہیں پر رسک بھی زیادہ ہوتا ہے، اور امپلائمنٹ کے اندر جو نوکری پیشہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہاں پر رسک زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ نے کسی کی نوکری کی ہوتی ہے، اب جس کے آپ نے نوکری کری ہے وہ تجارت کر رہا ہے. رائٹ، یعنی جس کی کمپنی ہے تو ظاہر ہے کمپنی کا جو اونر ہے وہ تجارت کر رہا ہے، لیکن آپ تجارت نہیں کر رہے، آپ تو اس کے ساتھ ایک لگے بندے اگریمنٹ کے تحت آپ اس کا ایک کام کر دیں گے اور وہ آپ کو تنخواہ دے دے گا. ٹھیک ہے، بندھا ہوا نظام جس کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر رسک کم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو وہ کل کو نکال دے، لیکن نکالنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو لگی بندی یعنی سیلری تو دیتا ہے نا، کم از کم جس کو بیس سیلری کہتے ہیں، تو وہاں پر رسک بھی کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رسک بھی کم ہوتا ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے وہ ہر جگہ دنیا کے اندر اپلائی ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نو گین وداؤٹ پین. ٹھیک ہے، یعنی اگر پین ہوگا تو پھر گین بھی زیادہ ہوگا، اور اگر پین کم ہوگا تو پھر گین بھی کم ہوگا. یہ دنیا کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، آگے کی جو آیات ہیں اس کا ہم تلاوت و ترجمہ شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 431 معرف القرآن والیوم نمبر 6 کے اوپر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو یا ہر وہ جو کہ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، اور والطیر صافات اور پر کھولے ہوئے پرندے بھی. ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور پر کھولے ہوئے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے یہاں پہ مینشن کیا کسی وجہ سے. آگے دیکھتے ہیں اس کی وجہ. کل قد علم صلاته وتسبیحه، ان میں سے ہر ایک کو معلوم ہے اس کی صلات اور اس کی تسبیح. یعنی صلات کا مطلب یہاں پر بندگی سے کیا ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا جس کو عربی میں صلات کہتے ہیں، تو اس کے اندر کامل بندگی का मुजाहरा होता है। ठीक है, तो ये जितने भी परिंदे और जानवर और कीड़े मकोड़े जितने भी हैं, इन सबको पहले से मालूम होता है, यानी अल्लाह ताला ने उनको सिखा के इस दुनिया में भेजा होता है कि कैसे उन्होंने बंदगी करनी है और कैसे उन्होंने अपने परवरदिगार की तस्बीह करनी है। वल्लाहु अलीमुम बिमा यफअलून, और अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है जो ये करते हैं। ठीक है, सब कुछ अल्लाह ताला जानते हैं कि जो जो तस्बीह करते हैं, जो जो यानी इबादतें ये करते हैं, और उसके अलावा जो काम करते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला के इल्म में। अब यहाँ पर मजे की बात जो हमारे जहन में आनी चाहिए फौरन, वो ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जितने भी लोग हैं ना, तो ये तो अपनी सलात को भी जानती हैं, जानते हैं और तस्बीह को भी जानते हैं, लेकिन इंसान का मामला बड़ा अजीब है। हालांकि इंसान जो है वो मन फिस समावाती वाल अर्थ के अंदर, तो इंसान भी आ जाता और परिंदे भी आ जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने परिंदों को जो है वो अलग से डिस्कस किया, गोया के परिंदे जो है वो यानी कोई खास उनकी अहमियत है, जिस तरह से अलग से डिस्कस किया ना। हालांकि परिंदे शामिल हैं मन फिस समावाती वाल अर्थ के अंदर, परिंदे भी शामिल हैं, लेकिन अल्लाह ने परिंदों को अलग से डिस्कस किया। उसी तरीके से जो अगली हिस्सा है इसका, कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु। ठीक है, तो ये जो उसूल अल्लाह ने बयान फरमाया ना कि उनमें से हर एक बंदगी और जात का तरीका जानता है, अब ये बात जो है परिंदों पर तो अप्लाई होती है, लेकिन क्या ये बात इंसानों पर अप्लाई होती है? ठीक है, हरगिज नहीं, इंसानों पर ये बात अप्लाई नहीं होती, इसलिए कि इंसान अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो कि है तो मन फिस समावाती वाल अर्थ के अंदर शामिल, जो कुछ आसमान और जमीन में उसमें तो इंसान भी शामिल है, लेकिन इंसान का मामला यह है कि इंसान अपनी ना तो तस्बीह करने का तरीका जानता है, ना जो है वो नमाज पढ़ने का तरीका जानता है। तो ये तरीके उसको कौन सिखाता है? वो तरीके सिखाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया का सिस्टम बनाया। अंबिया को अल्लाह, अच्छा अंबिया को भी नहीं पता होता, अंबिया को भी अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से सिखाते हैं कि जी ऐसे नमाज पढ़नी है, ऐसे तस्बीह करनी है। नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने सिखाया कि जी आपने ऐसी नमाज पढ़नी है, इस वक्त में नमाज पढ़नी है, इतनी रकअतें पढ़नी है, ये इस नमाज का इब्तदाई वक्त है, ये इस नमाज का इंतहाई वक्त है। सब कुछ जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम को सिखाया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम को जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह सिखा रहे हैं, तो हमें कैसे जो है वो बगैर सीखे सिखाए जो है वो चीजें पता हो जाएंगी? ठीक है, तो इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इंसान को मोहताज बनाया, आलिम का, उलमा का मोहताज बनाया। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि जी हमें तो सब पता है, हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता होता, हम तो असल में बेवकूफी की बात ही कर रहे होते हैं ना, इसलिए कि हमने तो जो जो कुछ हमें थोड़ा बहुत पता भी है वो भी हमने किसी से सीखा है, किसी ने हमको सिखाया है, लेकिन फिर हम थोड़ा बहुत सीखने के बाद इस जोन में मुब्तला हो जाते हैं कि नहीं नहीं वी नो एवरीथिंग। ठीक है, क्या क्या बात कहते हैं अक्सर, माशाल्लाह लोग ये बात भी कहते हैं जी पता तो सब कुछ है, बस जरा सा अमल का मसला है। ठीक है, पता तो सब कुछ है, जरा अमल का मसला है, ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पता सब कुछ है ये आप कैसे कह सकते हैं कि जी पता सब कुछ है? कितनी बातें होती हैं हमें नहीं पता होती हैं। ठीक है, कितनी बातें होती हैं जो कि यानी जाहिरी तौर पर हमें पता होती हैं, लेकिन उनकी हकीकत हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन हम कितने यानी बेखौफी के साथ ये दावा करते हैं कि जी पता तो सब कुछ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, पता सब कुछ नहीं होता। ठीक है, उलमा यानी जा अल उस्तादु खाली। ठीक है, ये एक मशहूर मकूला है कि जो उस्ताद का मुकाम होता है ना वो हमेशा खाली रहता है। मतलब ये है कि उस्ताद का मुकाम खाली रहने का मतलब ये कि यू आर ऑलवेज इन नीड ऑफ ए टीचर। ठीक है, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जी मैंने अपने उस्ताद के मुकाम को भर दिया है कि मैं ही अपना उस्ताद बन गया हूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। असल में इस फारसी के मकूले का ये मतलब है कि मैं अपने उस्ताद के मुकाम को मैंने फिल कर दिया है, नाउ आई एम माई ओन टीचर, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद का मुकाम हमेशा खाली रहेगा, वहां पर किसी उस्ताद ही को आकर के बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो कद अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमु बिमा यफअलून, और अल्लाह ताला अलीम है, सब कुछ जानने वाले तो अल्लाह ताला ही है। वफौक कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, सूरह यूसुफ की आयत का हिस्सा क्या है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक अलीम होता है। ठीक है, इवन इंसान कितना ही बड़ा आलिम बन जाए, कितने ही बड़े शेखुल हदीस, कितनी बड़े जो है वो मुफ्ती और अल्लामा बन जाए, लेकिन उनके ऊपर भी तो अलीम वाली जात मौजूद होती है ना, तो हर एक के ऊपर एक अलीम, हर एक के ऊपर एक ज्यादा इल्म रखने वाला अल्लाह ताला ने बनाया है। चाहे इंसानों में कोई इतना बड़ा हो जाए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि क्या आपसे ज्यादा कोई इल्म रखने वाला दुनिया में मौजूद है, तो वो समझे कि भाई मैं नबी हूं, तो नबी के पास सबसे ज्यादा इल्म होता है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरे अलावा कोई नहीं है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया नहीं है, आपके अलावा भी एक है। तो खिजर अलैहिस्सलाम के पास भेजा फिर इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन खिजर अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म था वो एक दूसरी नौइयत का इल्म था। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात फरमाई थी वो झूठ भी नहीं थी, इल्मे तशरीई के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उस बंदे ने इल्मे तशरीई का सवाल तो नहीं किया था ना, उस बंदे ने तो जनरल नॉलेज का सवाल किया था कि जनरली इल्म में आपसे कोई बढ़कर है, तो जनरली इल्म के अंदर तो उनसे बढ़कर भी था कि खजर अलैहिस्सलाम मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने उनके पास भेज दिया। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह के लिए है आसमानों और जमीन की मिल्कियत या बादशाही, मुल्क जो है वो बादशाही या हुकूमत को कहते हैं, और अल्लाह ही की तरफ है मसीर, लौट कर जाने वाली जगह, यानी अल्लाह के पास ही है वो जगह जहां पर हम सब ने लौट कर जाना है। हम सब ने लौट करके कहाँ जाना है, आखिरत के अंदर जाना है। आखिरत के अंदर या तो जहन्नुम में काफिर जाएंगे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, या जन्नत में जाएंगे ईमान वाले, ठीक है। तो ये सब जगह जो है वो अल्लाह ताला के अर्श के करीब है, ठीक है, जहां पर अल्लाह ताला मौजूद है अर्श के ऊपर, तो उसके ही तहत जो है वो जन्नत भी है, उसी के यानी बेसिकली आलम अरवाह वाली जारी चीज जो है वो जहन्नुम भी है, तो उसी की तरफ हम सब ने लौट करके जाना है, यानी हम सब ने अर्श पर नहीं पहुंचना है, बल्कि हम सब ने अर्श के नजदीक जो जगह है जन्नत और आखरत, तो उस जगह पर हमें सबने जाना है, या ये कि अल्लाह ताला के पास हिसाब के लिए पहुंचना है, ठीक है, सब सबका हिसाब जो है वो अल्लाह ताला ने लेना है, तो यही मतलब हो गया कि अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। अलम तरा अन्नल्लाह युज्जी सहाबन तुम्मा युअल्लिफु बैनहु तुम्मा यजअलहु रुकामन फतरल वदका यखरुज मिन खिलालिही। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, अन्नल्लाह युज्जी सहाबन, कि अल्लाह ताला लाता है बादल को, सहाब बादल को कहते हैं, तुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको मिला देता है, सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर उनको रखता है तह बर तह, फतरल वदका, पस तू देखता है कि मीह निकलता है यानी बारिश निकलती है, यखरुजु मिन खिलालिही, उसके बीच में से, यानी अल्लाह ताला तुम इस बात को ऑब्जर्व करते हो कि अल्लाह ताला बादलों को लेकर के आता है, और तह बतह बादल, जैसे हम देखते हैं बारिश के बादल जो आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ आ रहे हैं आसमान के ऊपर, सफेद रंग के गोल, यानी रुई के गालों की शक्ल से पहाड़ की मानंद जो है वो बादल आ रहे होते हैं, और फिर उनके दरमियान से अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं। वह युनज़्ज़िरु मिनस समाई मिन जिबालिन, और उतारता है आसमान से उसमें जो पहाड़ हैं, फीहा मिन बरदिन, ओलों के पहाड़ हैं, ओलों के यानी ये जो बादल हैं गोया के ओलों के पहाड़ हैं, फयुसीबु बिही मन यशाउ, फिर वो डालता है उसके उस पर डालता है जिस पर वो चाहे, यानी बादल जहां तक वो पहुंचाना चाहता है बारिश को वहां तक पहुंचाता है, वो यसरिफु अम्मन यशाउ, और बचा देता है जिससे चाहे। तो बारिश का निज़ाम जो है वो इंतहाई कैलकुलेटेड निज़ाम है, अल्लाह के सारे निज़ाम ही कैलकुलेटेड है, लेकिन बारिश की कैलकुलेशन जो है वो हमें बाकायदा नजर भी आती है। इसका मुजाहरा जो है वो आप अमूमन जब बारिश के अंदर होते हैं ना, तब तो मुजाहरा नहीं होता कि बारिश कहाँ तक पहुंच रही है कहाँ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन कभी हमें इतफाक हुआ, एक दफा एक एक पीक के ऊपर गए, एक बहुत पहाड़ की ऊंची चोटी के ऊपर जाना हुआ, तो उस पहाड़ के सामने जो है वो पूरा का पूरा सिटी नजर आ रहा था, ठीक है, यानी हमें पूरा सिटी, बहुत बड़ा एरिया जो है वो नजर आ रहा था, बहुत क्लियर व्यू था, तो वहां पर हमारे सामने जो है वो बादल आए, और बादलों के अंदर से बाकायदा बिजली कड़की और बारिश होनी शुरू हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये बारिश जो है वो एक खास हिस्से में पहुंच रही है और दूसरे हिस्से में नहीं पहुंच रही है, बिकॉज वहां पर बादल नहीं थे। बड़ा अजीब सा लगा, पहले कभी हमने ऐसा देखा नहीं था, लेकिन ये मुजाहरा यानी साफ बता रहा था कि अल्लाह ताला जो है वो यानी ये जितने वो जमीन के हिस्से थे कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने उस वक्त की बारिश लिखी हुई थी, ये बारिश सिर्फ वहीं पे पहुंच रही थी, और उसके अलावा सारे हिस्से जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं, सारे हिस्से जो हैं बिल्कुल इस बारिश से महरूम है, ठीक है, गोया कि बारिश का एक एक कतरा जो है वो इस एंड पे पहुंच रहा है और इस एंड के बाहर जो है वो बारिश का कतरा नहीं पहुंच रहा। तो जो लोग जमीन पर होते हैं उनको तो ये बात बिल्कुल फील ही नहीं होती, लेकिन अगर आप ऊपर से देख रहे हो इस मामले को, तो फिर कितना यानी बड़ा ये फिनोमेना के तौर पे नजर आता है, बड़ी हैरानी होती है कि बारिश बस इस यहाँ पे गोया के बॉर्डर है इस बारिश का, और इस बॉर्डर के आगे बिल्कुल बारिश नहीं पहुंच रही है। आगे फरमाया कि यकादु सना बर्क ही यदहबु बिल अबसार, कि अभी इसकी बिजली की कूंद ले जाए आंखों को, यानी यजहबु बिल अबसार, कि बिजली की कूंद ऐसी होती है कि उसका ऐसा आंख के ऊपर असर पड़ता है, अगर आप डायरेक्ट उसको देख रहे हो उस वक्त, कि ऐसा लगता है जैसे एक इंसान की बिनाई चली जाएगी, इतना उसके अंदर यानी स्ट्रेंथ होती है उस एक फ्लैश के अंदर। ये ऐसे ही है कि जैसे कि पुराने जमाने में जो खाली खास फ्लैश कैमराज होते थे, तो अगर कोई वो फ्लैश कैमरा को आपके बिल्कुल आंखों के सामने आकर के क्लिक कर दे, तो उस फ्लैश में से इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट निकलती थी कि कुछ देर के लिए आंखें जो है वो काम करना छोड़ देती थी। वल्लाहु खलका कुल्ला, नहीं, युकल्लिबुल्लाहु लैला वन नहार, अल्लाह ताला बदलता है रात और दिन को, इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार, इन सब बातों के अंदर इबरत है। इबरत का मतलब ध्यान करने का मुकाम है आंख वालों के लिए। आंख वालों के लिए का क्या मतलब, कि यानी कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर आंख नहीं होती, या जो जो अंधे होते हैं, तो अंधों की तादाद ओवरऑल दुनिया में कितनी होती है, बहुत कम होती है। तो जो जो अंधा नहीं है, क्या वो उलिल अबसार में शामिल होता है? नहीं, ठीक है। कितने ही काफिर होते हैं जिनकी आंखें जो हैं वो 6x6 विजन के साथ होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट विजन होती है उनकी, तो वो ये सारी चीजों को बतौर इबरत के नहीं देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर अबसार से मुराद ये जाहिरी आंखें नहीं है, बल्कि अबसार से मुराद यहाँ पर दिल की आंखें हैं, यानी इनके दिल अंधे होते हैं। जैसे कुरान के अंदर और मुकामात पर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं, और जिन लोगों के दिल अंधे हो जाते हैं इस दुनिया के अंदर, यानी अल्लाह ताला ने उनको दिल दिया होता है, अकल दी होती है, बसीरत दी होती है, सब कुछ दिया होता है, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसे लोगों का मामला कयामत के दिन क्या होगा, कि कयामत के दिन उनको जो अल्लाह ताला जिस्म अता फरमाएंगे ना, उस जिस्म की आंखें, जिस्मानी आंखें भी काम नहीं कर रही होंगी, और वो कहेंगे कि भाई हम तो दुनिया में देखा करते थे, हम तो आंखों वाले थे दुनिया के अंदर, तो आज हम अंधे कैसे हो गए? तो उसका जवाब उनको दिया जाएगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के अहकाम से गफलत बरती, इस वजह से कयामत के दिन तुम्हें अंधा खड़ा किया गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला कयामत के दिन हमें अंधों में शामिल ना फरमाए, और इसका तरीका यही है, दुआ के साथ दवा भी तो करनी होती है ना, तो दवा ये है कि इस दुनिया के अंदर हम उलुल अबसार में से बनने की कोशिश करें। तो दिल की आंखों को खोलना, जब दिल की आंखें खुलती हैं, फिर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाते हैं, वो बारिश ही अल्लाह ताला की तरफ पहुंचाने का जरिया बन जाती है, ठीक है ना। वो जो जो चीजें होती हैं अल्लाह ताला की, जिसको साइंस कहा गया, जिसके बारे में हमने क्लास में बात करी थी, तो वो सारे के सारे साइंस, सारी के सारी आयात अल्लाह ताला की तरफ इंसान के जहन को फेर देने के लिए काफी होती हैं, अगर बंदा उलुल अबसार में से हो। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाबतिन मिम्मा, और अल्लाह ताला ने बनाया हर फिरने वाले को पानी से। दाब्बा चलने वाले को कहते हैं, जो जमीन के ऊपर मखलूक चलती है, हर चलने वाली मखलूक को दाब्बा कहते हैं, ठीक है। यानी प्लांट्स जो हैं वो दाब्बा के अंदर नहीं आते, इसलिए कि प्लांट्स जो हैं वो चलते नहीं। तो प्लांट किंगडम बिल्कुल एक अलग किंगडम हो गई, बाकी रह गई एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम की डेफिनेशन यही है, जिसको कि हैवान भी कहा जाता है टेक्निकल अरेबिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, हैवान। तो हैवान की डेफिनेशन ये होती है जो कि अपनी जगह से आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर सकता हो, यानी राइट लेफ्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में मूव कर सकता हो, तो वो दाब्बा कहलाता है। तो हर दाब्बा को अल्लाह ताला ने पानी से बनाया, तो फिर ये मेडिकल साइंस की एक वो हो गई, पॉइंट हो गया कि जी जो जितने भी यानी हमारी जो 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 बॉडी है, तो उसके अंदर कितना ज्यादा पोर्शन जो है वो पानी का होता है, 70% से ज्यादा जो है वो हमारे अंदर पानी होता है, और इस तरह की और भी बहुत सारी दलीलें कि जी जो 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 स्मॉलेस्ट क्रिएचर है अल्लाह ताला की, तो वो पानी से ही बनी है, किसी भी शक्ल का पानी हो, चाहे एग्जैक्टली H2O टाइप का पानी हो या किसी और टाइप का पानी हो, लेकिन जो क्रिएशन अल्लाह ताला ने बनाई है वो पानी से ही बनाई है। और उसके ऊपर हमारे हजरत एक वाकया भी सुनाते हैं कि जो नासा के जो साइंटिस्ट थे, वो एक यानी बेसिकली ये डिस्कशन कर रहे थे कि मार्स के ऊपर लाइफ है कि नहीं है। तो बहुत सारी लोगों ने अपने रीजंस पेश किए कि जी अगर ऐसा है तो लाइफ है, अगर वैसा है तो लाइफ है, अगर ये सब नहीं है तो लाइफ नहीं है, ठीक है। तो कोई मार्स पे पहुंच करके तो नहीं देख रहा था, तो सबने जो है वो बेसिकली अपने यानी जो रिसर्चेस थी उनके बेसिस पर ही ये डिस्कशन करनी थी कि लाइफ है कि नहीं है। तो कोई एक फाइनल इन लोगों का कंक्लूजन नहीं निकल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली जो इन्होंने सबने सारे साइंटिस्ट मुत्तफिक हुए एक बात के ऊपर, वो ये थी कि अगर यानी एक कंडीशनल स्टेटमेंट थी, और कंडीशन क्या थी कि अगर मार्स के ऊपर पानी है तो इसका मतलब ये है कि मार्स पर लाइफ है, और अगर मार्स पर पानी नहीं है तो लाइफ नहीं है। तो अब जो है वो आसान हो गया कि जी मार्स पर जो अपने यानी स्टेशंस भेजेंगे या अपने रॉकेट्स वगैरह भेजेंगे तो वहां पर जाकर के ना वो पानी तलाश करें, यानी ऐसे रोबोट्स बना करके भेजे जाएं कि वहां पर वो ये देखे कि पानी है कि नहीं है। अगर पानी है तो इसका मतलब ये है कि लाइफ होगी वहां पर। तो अल्लाह ताला की के कुरान की आयत भी इस यही बात फरमा रही है कि लाइफ जो है अल्लाह ताला ने पानी से ही बनाई है। फमिनहुम मन यमशी अला बतनिही, फिर कोई है कि चलता है अपने पेट के ऊपर, जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपने पेट के ऊपर चलते हैं। वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और इनमें से ऐसे हैं जो कि अपने दो पैरों के ऊपर चलते हैं, जैसे कि इंसान या गोरिल्ला, वो भी दो पैरों के ऊपर कभी अक्सर चल लेता है। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और इनमें से ऐसे भी हैं जो कि चार टांगों के ऊपर चलते हैं, जिनमें जो सारे चौपाए हो गए या दूसरे किस्म के बीस्ट हो गए या जानवर वगैरह, तो वो चार पाओं के ऊपर चलते हैं। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला बनाता है जो चाहता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला बेशक हर चीज के ऊपर कादिर है। ठीक है, तो ये तो हमने इन आयात के को पढ़ लिया। अब आगे भी चलते हैं इंशाअल्लाह। नेक्स्ट आयात है लकद अनजलना आयात मुबैनात। किसी को कोई भी सवाल हो तो आप बीच में अपने पोस्ट कर दिएगा। लकद अनजलना आयात मुबैनात, तहकीक के हमने उतारी खुली हुई आयात, यानी ऐसी आयात उतारी हैं जो कि जिनको के समझना जो है वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आयात निशानियां जो अहकाम है ना कुरान के अंदर, वो एक अलग कैटेगरी है कुरान की आयात की। अच्छा, कुरान की यानी जो लफ्ज आयात इस्तेमाल होता है तो ये इन जनरल जो है वो कुरान की हर आयत के ऊपर लागू होता है। ठीक है, हर आयत, चाहे वो अहकाम वाली आयत हो, चाहे वो जो है पुराने जमाने के अकवाम के बारे में बातें हो, चाहे वो जो है आखरत के बारे में बातें हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ही को हम आयात कहते हैं। ठीक है, तो सब कुछ ही जो है वो एक तरह से अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट कर देने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो अहकाम वाली आयात होती हैं तो उनके अंदर कुछ ऐसी तफसीलात होती हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने उलमाए कराम को खासियत बख्शी कि वो उसको फिर तफसीली तौर पर स्टडी करते हैं और फिर दूसरे लोगों को समझाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला ने अवामुन नास को उलमाए कराम का मुहताज बनाया है, वही जो है वो अहकाम की आयात को समझ करके समझाते हैं। लेकिन अहकाम की आयात के अलावा जितनी भी आयात हैं तो वो बड़ी खुली हुई हैं, बड़ी वाजे हैं। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में एक और जगह पे बार बार हमें याद कराते हैं ना कि क्या है वो आयत सूरह وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ تحقیق کہ ہم نے نازل کیا قرآن کو نصیحت کے لیے، بس کوئی ہے جو کہ اس سے نصیحت پکڑے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر قرآن کا لفظ تو قرآن کا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ذکر کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیا اس کے اندر احکام والی آیات بھی شامل ہیں؟ نہیں، अहकाम वाली आयात इसलिए शामिल नहीं है कि अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया है कि जिक्र के लिए हमने इसको आसान कर दिया है, और जिक्र से मुराद होता है नसीहत नामा, नसीहत। ठीक है, यानी इबरत वाली बातें, नसीहत वाली बातें। ठीक है, तो जो कुरान की आयात नसीहत वाली आयात है ना, वो यहाँ पर मुराद है वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र के अंदर। ठीक है, कि तहकीक के हमने आसान कर दिया कुरान को नसीहत के लिए। ठीक है, तो अब इस आयत को हमारे जैसे जो यानी होते हैं दुनियावी एजुकेशन रखने वाले लोग, लेकिन जब वो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, और हम जो है वो अपनी छोटी सी इल्म की बेसिस के ऊपर ना कुरान के तफसीर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तफसीर करने से जो है ना वो मना फरमाया गया है, ऐसा तफसीर करना कुरान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। हजरत अलामा ये मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है जो कि इस मौके के ऊपर आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ। सूरह फुरकान जो कि सूरह नूर ही के बाद अगली आयत है, अगली सूरत है कुरान की ना, तो सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह ताला ने आखिर के अंदर जा करके इबादुर रहमान की सिफतें बयान फरमाई हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के खास नेक बंदे जो होते हैं उनकी सिफतें बयान फरमाई हैं। तो उन सिफतों के अंदर अल्लाह ताला ने एक बात फरमाई, एक मिनट, والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, कि ये वो लोग जो होते हैं कि जब इनके सामने अल्लाह ताला की आयात पढ़ी जाती हैं या जिक्र की जाती हैं, यानी याद कराई जाती हैं उनको अपने अल्लाह ताला की आयात, ठीक है, तो लम यखिरु अलैहा, तो वो इन आयात की तरफ अंधे बहरों की तरह मुतवज्जे नहीं होते। ठीक है, सुम्मन व उम्यानन, अंधों और बहरों की तरह मुतवज्जे नहीं होते, बल्कि समी और बसीर इंसान की तरह इनमें गौर करते हैं और उन पर अमल करते हैं। ठीक है, अब ये बात जो है फरमा करके आगे कहते हैं कि अहकाम दीन का सिर्फ मुतालिया काफी नहीं है, बल्कि असलाफ की तफसीर के मुताबिक समझ कर अमल करना जरूरी है, क्योंकि जो अहकाम दीन है कुरान के अंदर इनका मामला अलग है, ये नसीहतनामे नहीं है खाली, ये अहकाम दीन है, और इनको समझने के लिए असलाफ की तफसीर के यानी रेफर करना ये जरूरी है। तो इसके आगे ना इन्होंने एक बड़ी यानी अहम बात लिखी है, बहुत अहम बात लिखी है, जो कि हम बहुत मिसअंडरस्टूड हैं उसके बारे में। फरमाया कि इस जमाने में यानी मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने की बात करें जो कि आज से तकरीबन 50-60 साल पहले का जमाना था। ठीक है, इस जमाने में ये बात तो काबिल शुक्र है कि नौजवान और नौ तालीम याफ्ता तबके में कुरान पढ़ने और उसके समझने की तरफ कुछ तवज्जो पैदा हुई है। ठीक है, क्योंकि उस जमाने के अंदर नौजवानों के अंदर ना कुछ हजरात काम कर रहे थे जो कि उनको दीन की तरफ लाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जबरदस्त किस्म की दलीलें दे रहे थे। ठीक है, और बहुत अच्छी उनकी तसानीफ थी जिनकी वजह से नौजवान तबका जो कि पढ़ा लिखा कॉलेज यूनिवर्सिटी एजुकेटेड था वो दीन की तरफ राग़िब हो रहा था। वो तो फरमा रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कुछ ऐसे लोगों के दरमियान कुरान पढ़ने और उसके समझने की तरफ कुछ तवज्जो पैदा हुई है, और इसके तहत वो बतौर खुद कुरान का तर्जुमा या किसी की तफसीर देखकर कुरान को खुद समझने की कोशिश करते हैं, मगर यह कोशिश बिल्कुल बेउसूल है। ठीक है, यानी ये जो कोशिश है ना कि खुद से तर्जुमा पढ़ करके या खुद से किसी हत्ता कि इन्होंने तफसीर को भी इसमें शामिल किया। ठीक है, खुद से तफसीर पढ़ करके कुरान को समझने की जो कोशिश करते हैं ना, तो कह रहे हैं कि ये कोशिश बिल्कुल बेउसूल है, इसलिए कुरान को सही समझने के बजाय बहुत से मुगालतों के शिकार हो जाते हैं, बहुत सी गलतियों का शिकार हो जाते हैं। उसूल की बात यह है कि दुनिया का कोई मामूली फन भी निरी किताब के मुद्दे से किसी को मुअतद भी हासिल नहीं हासिल हो सकता जब तक उसको किसी उस्ताद से ना पढ़े। मालूम नहीं कुरान और उलूम कुरान ही को क्यों ऐसा समझ लिया गया है कि जिसका जी चाहे खुद तर्जुमा देखकर जो चाहे उसकी मुराद मुतय्यन कर ले। ये बेउसूल मुतालिया जिसमें किसी माहिर उस्ताद की रहनुमाई शामिल ना हो, ये भी आयात इलाहिया पर अंधे बहरे होकर गिरने के मफहूम में शामिल है। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं कि ये बेउसूल मुतालिया यानी उस्ताद के प्रेजेंस के बगैर, उस्ताद की प्रेजेंस का क्या मतलब होता है, उस्ताद की प्रेजेंस का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपके सामने उस्ताद मौजूद रहे, के उस्ताद की प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो ये इल्मी सफर है ना, ये जो आपने शुरू किया है कि जी मैं कुरान को समझना चाहती हूं या कुरान को समझना चाहता हूं, इस इल्म
इसी वजह से जो क्लासेस रखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में 2 दिन रखते हैं, हफ्ते में 3 दिन रखते हैं या 4 दिन रख लेते हैं, जो कि प्रॉपर आलम कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। उससे ज्यादा तो आप टाइम नहीं दे सकती है ना घर में बैठे हुए, ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास की शक्ल के अंदर हमेशा कुरान को स्टडी करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके इस स्टडी के अंदर एक एक सिस्टम का दखल रहना चाहिए, यानी यू शुड बी पार्ट ऑफ ए सिस्टम कि जिसके अंदर असातिज़ा मौजूद हो और उनकी निगरानी में या उनकी असिस्टेंस के साथ आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जी तर्जुमा बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं या तफसीर जो है वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो कि बिल्कुल ही उस्ताद से यानी अपने आप को मुस्तगनी समझकर, इंडिपेंडेंट समझकर, यानी जो 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 क्वालिफाइड उलमाए कराम है उनसे अपने आप को यानी उनकी यानी जरूरत को महसूस किए बगैर ही, जरूरत को समझे बगैर ही बस तर्जुमा उठाएं या कोई भी तफसीर उठा लें और पढ़ना शुरू हो जाएं। तो ऐसी जो चीज है ना, इस तरह से जो कुरान का तर्जुमा या तफसीर का मुतालिया होता है उसको फरमा रहे हैं कि ये भी आयात इलाहिया पर अंधे बहरे होकर गिरने के मफहूम में शामिल है। लम यखिरु अलैहा सुम्मा उम्याना, इबादुर रहमान ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इबादुर रहमान जो कुरान की आयात पढ़ते हैं ना और समझते हैं तो वो प्रॉपर सिस्टम के तहत समझते हैं, और उसकी वजह भी बहुत आसान सी है समझ में आना। अगर कोई पूछे नहीं जी खामखे आपने ऐसी बातें कर दी हैं, उन्होंने ऐसी बातें कर दी हैं, क्यों तो आए थे, ये तो है ही मौलवी, तो मौलवी ने तो ऐसी बातें करनी है, जाहिर से वो मौलवी और क्या बात कर सकता है, वो तो यही कहेगा ना कि जी मौलवियों से पूछ के चला करो ताकि मौलवियों का एक निज़ाम जो है वो दुनिया के अंदर चलता रहे, राइट। वो बड़े बने रहे, वो इजारादार बने रहे दीन के, जभी तो वो ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर तो बहुत सारी तफसीलात हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बयानात में भी समझाने की कोशिश करनी है, क्लासों में भी समझाते रहते हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले भी समझाई थी, लेकिन इसका एक सिंपल एक आंसर जो है ना वो हमेशा याद रखें, जो कि हम आप लोगों के सामने अक्सर कहते भी रहते हैं कि शैतान की एग्जिस्टेंस से कभी भी गाफिल ना हो, ठीक है। ये जो उलमाए कराम होते हैं इनकी जरूरत हमें क्यों है हमेशा, क्योंकि दूसरे साइड पर एक आलिम मौजूद है जो कि हमारे साथ हर वक्त लगा हुआ है, वो आलिम जो है वो शैतान कहलाता है। जब हम बगैर किसी उलमा की गाइडेंस के साथ, उलमा की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जब हम तफसीरें पढ़ते हैं या तर्जुमे पढ़ते हैं तो शैतान फिर हमारा उस्ताद बन जाता है, और वो फिर ये गलतियां जो है ना वो खुद से नहीं होती हैं गलतियां, ये जो कह इन्होंने लिखा है ना इसी के मुगालते का शिकार हो जाते हैं। तो इसी को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि शैतान मुगालतों का शिकार करता है, ठीक है, फिर शैतान तफसीर करता है उनके जहन के अंदर, बात बनाता है कि जी हाँ अच्छा ये कह रहे हैं, अच्छा इसका ये मतलब भी हो सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर ये अगर अल्लाह हर चीज पर कादिर है तो फिर अल्लाह तो फिर यानी काफरों को भी को क्यों नहीं दे देता हिदायत, और अल्लाह जो है वो यानी इस बात पर, यानी बहुत सारी चीजें जो कि इवन व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर लोग एक दूसरे को भेजते रहते हैं, ठीक है। आप जरा कभी कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये जो काफिर हैं, जो ऐसे भी कितने लोग हैं इस दौर के अंदर, बड़े पैमाने के ऊपर लोग हैं अनफॉर्चुनेटली दीन इस्लाम को छोड़ रहे हैं, ठीक है, मुर्तद हो रहे हैं, फिर मुर्तद होने के बाद किताबें लिखते हैं, व्हाई डिड वी लीव इस्लाम, ऐसे लोग जो हैं वो इस्लाम के खिलाफ दलाइल देते हैं। तो ये सब कहां, ये सारे जाहिल नहीं होते हैं, ये पढ़ करके इस्लाम को छोड़ते हैं, ये तफसीरें पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कि कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा इल्म हासिल किया और उसके बाद वो मुर्तद हो गए, वो वापस चले गए अपने क्रिश्चियनिटी की तरफ या किसी दूसरे दीन की तरफ, और अब वो बाकायदा दीन इस्लाम का मुकाबला कर रहे हैं इन चैट ग्रुप्स के ऊपर बैठ करके, राइट, अपने यूट्यूब वीडियोज बनाते हैं और वीडियोज जो है वो वायरल हो जाते हैं, हर वीडियो आज के दौर में वायरल हो रही है, राइट। तो ये सब जुहला नहीं है, ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने तफसीरें पढ़ी हैं, जिन्होंने तर्जुमे कुरान के पढ़े हैं, राइट, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये मुर्तद क्यों हो जाते हैं, उसकी वजह यही बनती है, यही वजह है उसकी कि ये जो उलमाए हक होते हैं ना उनसे अपने आप को इंडिपेंडेंट, उनसे अपने आप को बुलंद समझ करके तफसीरें पढ़े होते हैं, उनसे अपने आप को मुस्तगनी समझ करके तफसीरें पढ़े होते हैं, और शैतान वो खुल के खेलता है फिर इनके साथ, फिर वो डाउट पैदा करता है, बातों के गलत मतलब जो है वो इनके दिलों के अंदर डालता है, और इसकी वजह से फिर वो दीन इस्लाम के करीब होने के बजाय उल्टा दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ना फिर बहुत सारे नौजवान जो हैं वो पढ़ पढ़ करके वो उल्टा और जो है वो दीन के या तो मुखालिफ हो जाते हैं या फिर वो उलमाए कराम के कम अज कम मुखालिफ हो जाते हैं। तो लकद अनज़लना आयात मुबैनात, अल्लाह ताला ने खोल खोल के आयतें बयान करी हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ही शैतान को भी बनाया है, अल्लाह ताला ही जो है वो नफ्स परस्त इंसान के ऊपर शैतान को मुसल्लत फरमा देते हैं। तो कुरान की जो तर्जुमा है उसका एक तरीका अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से सिखाया कि सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान समझाया। ठीक है, सहाबा ने ऐसी ऐसी चीजें कुरान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी जो कि बजाहिर लगता था कि अरबी जुबान के एक्सपर्ट्स होने के नाते उनको तो एज्यूम कर लेनी चाहिए थी ये चीजें, लेकिन एज्यूम नहीं कर सके, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना पड़ा। तो सीखने सिखाने का सिलसिला अल्लाह ने जारी फरमा दिया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए से। अब उस सिलसिले को छोड़ करके हम कुरान को नहीं समझ सकते। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है वो उसको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। इसके बारे में हम पिछली चंद क्लासों के अंदर बात कर चुके हैं जब वो मोमिन के दिल के नूर की बात हो रही थी। वयकूलून आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूल, और ये लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर उसके रसूल के ऊपर, वह अता और हमने हुक्म माना, हुक्म में आ गए या हुक्म हमने माना। तुम यतवल्ला फरीक मिनहुम मिन बाद ज़ालिका, फिर जाता है एक फिरका उनमें से उसके बाद। वमा उलाइका बिल मोमिनीन, और ये लोग नहीं मानने वाले हैं, यानी ईमान वालों में ये लोग शामिल नहीं है जो कि शुरू में कह देते हैं कि जी हम तो ईमान लेकर के आ गए और हमने जो है वो आपकी अतात भी कबूल कर ली, लेकिन बाद में फिर गए। ठीक है, तो बाद में जो फिर गए तो इसका मतलब क्या होता है कि यही उन्होंने जो ये बात कही थी, या तो वो झूठ कह रहे थे, मुनाफिकीन में से थे, सिर्फ जुबानी तौर पर कह रहे थे, या ये कि अगर वो एक ईमान वाले बन भी गए ना तो उन्होंने फिर बाद में जाकर कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी। ठीक है, ऐसी बड़ी गलती करी कि जिसकी वजह से ना उनको अल्लाह ताला ने ईमान से महरूम कर दिया, जैसे नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी। ठीक है, इस किस्म की जो बड़ी गलती होती है ना फिर उसके सजा के तौर पर ईमान से इंसान को महरूम कर दिया जाता है। तो इसी वजह से जो ईमान वाले होते हैं वो एक तो अदब का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, ठीक है, और वो हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं अल्लाह ताला की कोई हमारे ऊपर पकड़ ना आ जाए कि जिसकी वजह से हमें इस ईमान से, जिसके अभी अभी तो हमारे पास है लेकिन अगर हमें इससे महरूम ना कर दिया गया तो फिर तो हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। तो अल्लाह ताला ऐसी भी बातें याद दिलाते रहते हैं कि माजी में भी ऐसा हुआ है कि ईमान लाने के बाद भी महरूम कर दिए गए, तो तुम भी अपने आप को महफूज ना समझना। وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ, और जब उनको बुलाए अल्लाह और रसूल की तरफ कि उनमें कजिया चुकाइए, तब ही एक फिरके के लोग उनमें मुंह मोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ से जो तर्जुमा और तफसीर वगैरह ना वो इंशाल्लाह हम कल पे रखते हैं, क्लास का टाइम भी वैसे हो गया है और इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा तफसील की शायद जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हम आज क्लास रोकते हैं, किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। चलेगा, कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।